अल्लाह कहते हैं अभी तड़प नहीं है, तो आओ जरा देखो वो जन्नत जो तुम्हारा रास्ता देख रही है। बस सारी ला मगफिरत मिन रब्बिकुम व जन्नत अर्दुह समावात वल अर्द, दौड़ कर चलो इस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी वसत जमीन और आसमान जितनी है। दुनिया के एक घर की तड़प में हम तड़पते हैं, तो क्या जन्नत के खूबसूरत घर हमें बुलाएं तो हम खामोश बैठे रहेंगे? एक बार जन्नत की तड़प लग जाए फिर इंसान नहीं पलटता। देखिए, जिसको जन्नत अपनी आंखों से दिखती है ना, और कोई भाग रहा है, फिर उसको किसी की परवाह नहीं होती। आपने देखा होगा सम टाइम हस्बैंड्स के साथ औरतें शॉपिंग के लिए जाती हैं। आप इमेजिन कीजिए, आप अपने बच्चे को लेकर, मियां को लेकर शॉपिंग के लिए गई, मियां साहब बेचारे बच्चे को पीछे उठाए फिर रहे हैं और आप चलती जा रही हैं। ऐसे मियां भी होते ही हैं जब औरतें जाती हैं, अब नहीं होते, वो हमने खुद ही शॉपिंग करनी शुरू कर दी इसलिए। लेकिन आप इमेजिन तो करें ना, अब आप चीज देख रही हो, कहते चलो बेगम जल्दी करो मैं थक गया हूं, अच्छा बस अभी आती हूँ, अभी आप कर जाती, एकदम आपको दूर अपनी पसंद का कोई सूट, कोई जेवर, कोई पर्स दिखता है, आप उसके पीछे चलती हैं, आप जाके खो जाती, ये भी है वो भी है, ये एकदम आपको ख्याल आता है मियां तो वहां खड़े हो गए थे कि मैं तो नहीं आऊंगा पीछे, तो आप कहते हो किधर, लेकिन हम मुड़के देखते हैं तो गरीब फिर खड़े हैं बच्चे को लेकर, उनको समझ आ गई है कि आपने तो अब ये जोड़ा लेके ही जाना है। तो जब आपको वो चीज की तलब थी तो आपके मियां साथ आके ना बस यही अपना शॉपिंग का जो शौक है वो इस जन्नत की शॉपिंग में कर ले। आपको यकीन है ना कि आपको जन्नत लेनी है, यू नीड जन्ना। आप देखिए, आपके बच्चे, आपके शौहर, आपके ससुराल आपके पीछे आएंगे ही आएंगे। होता क्या, जब हम उनको खुश करने के लिए वो सब काम छोड़ते हैं, वी गिव अप, गिव अप, ना 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 घर खराब हो रहा है, दिन का काम छोड़ दो, ना 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 ये नहीं, तो एक दफा इस चीज का यकीन रख लें कि जन्नत चाहिए। और जन्नत कैसी है, अब आगे कुरान में पढ़ते ही जाएंगे आप लोग, मैं उसके बारे में क्या बताऊं। लेकिन याद रखिये, वो इद्दत लिल मुत्तकीन, आप नोट करें, बार बार तकवा, पूरे पारे में तकवा, मुत्तकीन, अल्लाह की शर्म करो, नेकियों के मौके रखो। हम कहते हैं ना गुनाहों से बचने का नाम ने तकवा है, वो भी है, लेकिन तकवा के अलग दर्जे कौन से होते हैं कि जब इंसान तकवा के नाम पर नेकियों के मौके भी ढूंढता है। आज मेरे और आपके पास कितना वक्त है, आप में से मैं सब उन साथियों को कहूंगी जिस वक्त घरों में छुट्टियों में है, फुहारे गए, जॉब करते तो छुट्टियां थी, पढ़ते तो छुट्टियां थी, समर है तो छुट्टी है, आप अपने इस वक्त को इन्वेस्ट करें, बैठिए, मिलके दिमाग जोड़िए, क्या कर सकते हैं, किधर प्लान कर सकते हैं, कहाँ जाके दीन की बात कर सकते हैं, कहाँ जाके इन चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप देखिएगा ये 2-3 महीने आपकी पूरी जिंदगी के लिए सुकून और खुशियों का जरिया बनेंगे। सुस्त नहीं होता, हम लेजी हो जाते हैं, हम अपने आप को पीछे डाल देते हैं, तो अल्लाह हमें वो तकवा दे जो हमें नेकियों के मौके ढूंढने वाला बना दे। अब कौन होते हैं मुत्तकी, हाईलाइट करना चाहें तो करते जाइए आयत 134 से, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ, जो हर हाल में अपने माल खर्च करते रहते हैं, यानी कि बुरा ख्वाब आ गया तो कब बकरा दे दो, सदका देना है तो बकरा सत्रह दे दो, खुशियों में भी खर्च करते हैं तंगियों में भी, ख्वाब बदहाल हों या खुशहाल हों। दूसरा काम काज़मीन अल-ग़ैज़, गुस्से पे काबू पाना, इसको हाईलाइट करिए, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा गुस्से में क्यों है? आप अक्सर बच्चों के ये सवाल सुनेंगे, जब माएं कहती हैं हम एयरपोर्ट पे जाते हैं फिर उस पे सवाल जवाब सारे हो रहे होते हैं, तो बच्चे कहते हैं मामा व्हाई दे आर एंग्री, और मैंने खुद इस चीज को बहुत शिद्दत से फील किया। आपकी इमिग्रेशन के काउंटर पे जो लोग बैठे होते हैं वो आपको यूं ट्रीट कर रहे होते हैं कि आप क्यों आए अपने मुल्क में, सारी दुनिया में आप जाए आपको स्माइल मिले, हंसी मिले, हाय हेलो हाउ यू डूइंग दिस दिस दिस, और आप जब मुस्लिम फोरम्स पे हैं तो वो आपको क्या है, चले लाइन में जाओ, कोई काम नहीं हो सकता, क्या ये रिएक्शन है? जब हमें पूरे ग्लोब से बातें सुनने को मिली ना तो हम रिएक्शनरी हो गए। कहते हैं कि जिस बच्चे को मोहब्बत नहीं मिलती वो मोहब्बत नहीं देता, बच्चे के सामने स्माइली रहेंगे वो स्माइली होगा, चूंकि हम पिछले 200-300 साल से दुनिया की बातें सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, हमारा मिजाज बिगड़ गया। आज काज़मीन अल-ग़ैज़ होने की जरूरत है, इस गुस्से को अंदर रखें, काम करवाएं। देखिए जैसे गुब्बारा होता है ना गैस वाला, उसमें एयर भरता है, तो वो आप उसके अंदर रखेंगे ना तो वो गुब्बारे को ऊपर उड़ाएगा, लेकिन जो ही उसको पंक्चर करें एक सुई के साथ वो गुब्बारा नीचे जाएगा। ये जो हमें इस्लाम के खिलाफ बाहर बातें सुनने मिलती है ना, इसको अपने अंदर डालें, ये आपकी एनर्जी बनेगी या आपको ऊपर ले जाएगी। हम मुंह से बोल बोल के उल्टे सीधे जुमले बोलते हैं, उसको मुर्दाबाद, उसको खराब, और वो हमारे दुश्मन, और सबको अपना दुश्मन कह के आते हैं। गज़वे उहद से आपको ये भी सबक मिल रहा है कि अपनी गलतियों को अपने नाम पे लो, हम हमेशा दूसरों पे लेते हैं, ये जी कॉन्स्परेसीज हैं और ये साजिशें हैं और वो फुला हमारे खिलाफ है और वो पसंद नहीं करता और वो हमारे खिलाफ है, नहीं तुम अपना भी तो सोचो। तो आज मुसलमानों को जरा गुस्सा तो कम करें, सर स्माइल तो आप दें। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ प्लीज बी ऑन रूम टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों हो गया। एक तरफ कोल्ड है हम, ये भी एक दुख की बात है कि वेस्ट में रहने वाली हमारी जनरेशन कोल्ड है। वो उस बंदे को स्माइल भी नहीं देते जिससे उसकी कोई जाहरी दोस्ती ना हो, कोई उनको अच्छा नहीं लगता, इट्स ओके हु केयर, मॉम इज नॉट होम, फोन रह लो, नो शी इज नॉट होम, सलाम अलैकुम। पहले बच्चियां घर आयो को चाय पानी पिलाकर भेजती थी, आज आप चले जाए अपनी दोस्त के घर, अगर उसकी बेटी को आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं, वो आपको बाहर दरवाजे से कहती मॉम इज नॉट होम, जाए वापस, अब मुझे क्यों तंग करें, मैं बहुत सारा ऊपर छोड़ के आई हूँ, अपनी मशीनें खोली भी थी जो सुन रही थी देख रही थी, आप जाइए। ये कोल्ड वेस्ट है। और दूसरी तरफ हम टू हॉट है, हमारा टेम्परेचर खराब है, बूढ़े हमारे हॉट है और जवान हमारे कोल्ड है, इन दोनों को मिलाकर क्या कर दे, ल्यूक वार्म। वक्त पड़े तो गर्म हो, नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जुस्तजो, रज़्म हो के बज़्म हो पाक बिलो पाक जो। मोमिन कभी हॉट होता है, कभी सॉफ्ट होता है, कभी ठंडा होता है, कभी गर्म है, ये जो एक बिल्कुल ऐसी कैफियत आ रही है ना, तो वो क्या होती है आप देखिए कि वो जब ईसीजी करवाते हैं तो हार्ट बीट यूं आती है ना, और कभी यूं सीधी लाइन आए तो कहते हैं योर पेशेंट इज एक्सपायर्ड। इस वक्त हम बात को बिल्कुल यूं देख रहे हैं, ये कोल्डनेस है, और बिल्कुल ऊपर नीचे होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है। रिलैक्स, खुश रहे, अपने आप को पहले दें, डीमोरलाइज नहीं करना। आज हम बहुत सारे लोगों का ये भी कसूर है कि हम मुसलमानों को डीमोटिवेटेड करते रहते हैं, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने कभी संभलना नहीं, तुम तो कभी ठीक ही नहीं होगे। अब जो बच्चा दिन रात अपनी माँ से ये जुमले सुने, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम रहे सुस्त के सुस्त, तुम पानी के वटका नहीं हिलाओगे, तो बताइए वो बच्चा क्या करेगा। तो लिहाजा अपने आप को भी हमने ठीक करना है, और दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं, सबको माफ कर दें, एक हस्ती को माफ कभी ना करें। आप खुद अपनी छोटी से छोटी गलती को लें, फिर खुद को सजा दें, ट्रेनिंग करें, खुद को उसके बदले में कुछ सजा दिलवाएं, नफिल रोजा रखें, सदका दिलवाएं, कुछ करें, दूसरों के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखें। इंशाल्लाह देखिएगा कि अल्लाह ताला आपसे बहुत खैर लेगा। वल्लज़ीना इज़ाफ़ालू फ़ाक़िशतन अव ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद है जिनका हाल ये कि अगर कभी कोई फुहश काम इनसे सरजद हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो फौरन इनको अल्लाह याद आ जाता है। नोट करें, मोमिन लफ में, हराम में, गंदी चीजों में होता नहीं है। वल्गर थिंग और मोमिन दो डिफरेंट थिंग्स है। कभी हो गया एकदम रब याद आ जाता है, ओहो ये मैं क्या देखने लगी, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, नफिल पढ़ूंगी, सदका दूंगी, कसूरों की माफी मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाहों को माफ कर सकता हो। वो कभी जानते बूझते अपने किए पर इसरार नहीं करते, ये नोट करें। मोमिन की लिस्टों में गुनाह करना नहीं होता, वो इरादे के साथ, ख्वाहिश के साथ गलत काम नहीं कर रहा होता कि अच्छा प्लान गलतियां हो। वो पहले से टाइम देकर, पैसे देकर, एडवांस बुकिंग कराकर अपनी शादियों के लिए कोई ऐसे लोगों को नहीं बुला के बिठा रखते कि जो उनको तो खुश करें लेकिन रब को नाराज कर दें, कि जिनकी मौजूदगी रहमत के फरिश्तों को दूर कर दें। वो खुशियों के नाम पर रब को भी खुश रखते हैं, तो ऐसे लोगों की तो अल्लाह ताला भी बहुत ज्यादा केयर करेगा। और ऐसे लोग जब तक अल्लाह ताला के हुक्मों के साथ चलते जाएंगे, अल्लाह ताला उनके छोटे मोटे गुनाह माफ कर देगा। फरमाया से लोगों की सजा इनके रब के पास ये है कि वो इनको माफ कर देगा और ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो वहां हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है नेक अमाल करने वालों का, इमेजिन कीजिए एक दिन आप जन्नत में हैं, सब भाग दौड़ खत्म, सब चीजें गई, इधर उधर की फजर की नमाज के लिए कोई नहीं उठना जन्नत में, पर्दा जन्नत में नहीं करना पड़ेगा, आपके मियां साहब को दाढ़ी नहीं रखनी पड़ेगी, आपको रोजे नहीं रखने पड़ेंगे। वाह क्या जन्नत है। आप सोचिए अपने मियां से पूछिए, आप चाहते हैं कि आपकी बियर्ड ग्रो ही ना हो, क्योंकि क्यों नया कोई सोल्यूशन आ गया, कोई नई चीज आ गई, आप कहना हाँ जन्नत के मर्दों के चेहरों पर बाल नहीं होंगे, आपको वैक्सीन की मुश्किलात भी सहनी पड़ेंगी जन्नत में जाकर, चीजें भी मरवा के अपने आप को साफ कराएंगे, तो तकलीफ होती है ना, लेकिन करवाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, तकलीफ दुनिया की सह ले, लेकिन जन्नत में कुछ भी नहीं है। हदीस में था कि जन्नत की औरत इतनी हसीन होगी कि अगर वो दुनिया में झांक ले तो सूरज की रोशनी उसके आगे मांद हो जाए। तो चंद दिन की बात है, सब्र शुक्र कीजिए। कितनी कुर्बानी देते हैं ना लोग अपना कैरियर बिल्ड करने के लिए, सारा घर शादी पे जा रहा है, बच्चा नहीं जा रहा, जिनके उसका पेपर है उसको मेडिकल पढ़ना है, उसको साइंस पढ़नी है, डिस्टेंट है, कर रहे हैं ना, क्योंकि एक कैरियर बनेगा। तो मैं और आप इस दुनिया में, इस दुनिया को बनाने के लिए नहीं है, अपने कैरियर को बनाने के लिए, और इस दुनिया को जन्नत नहीं बनाना बल्कि आखिरत की जन्नत लेनी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे जब हम इस पे तैयार होंगे तो फिर हमें ये सब गम भूल जाएंगे। کسی کو یاد نہیں ہوگا پڑھنے کے دنوں میں جو محنت ہوتی تھی، کیونکہ آج اللہ نے کیریئر دے دیا، تو انشاءاللہ ایک دن ہم جنت میں ہوں گے۔ دعا مانگتے ہیں اپنے اور سب کے لیے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، کیونکہ جنت مانگیں گے تبھی کام ہوگا، اور جنت کو اپنی آنکھوں میں رکھیں۔ گھر میں اپنے بچوں سے باتیں کیا کریں، بیٹا جنت میں ہم کیسے رہیں گے، بیٹا تمہارا کس طرح کا بیڈ روم ہوگا، تم کیا لینا چاہو گی۔ بچوں کو ڈریمنگ دیں، ان کو ویژولاز کرائیں کہ ہم جنت میں ایسے رہیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ ایک ماں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ وہ اپنے بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ان سے شیئر کرتی تھی، تو وہ ایک دن بچی کہتی ہے ممی ہم کب جائیں گے جنت میں۔ تو آپ سوچیے یہ کب جائیں گے جنت میں، اگر ہم پوچھیں تو اسی کا نام تک ہوئے۔ مومن بھی دنیا میں یہ تڑپتا ہے کہ اللہ میں کب جاؤں گی جنت میں، تھک گئی ہوں اس دنیا سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن اس دنیا میں خود کو ایک قیدی کی طرح محسوس کرتا ہے، جبکہ کافر کے لیے دنیا باغ ہے یا جنت ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اپنی جنتیں آگے بنانی ہے، اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو سب کو ساتھ کر کے جنت میں جگہ دے۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کچھ لائبلٹیز تو ہیں، اور وہ جب کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی عمل ضائع نہیں کرے گا۔ فرمایا کیسا ہی اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو پامال کر دیا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اب یہاں سے آگے دیکھیے گا، جنگ کی غلطیاں ہو گئیں، بہت کئی سارا معاملہ چل رہا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے۔ جب مسلمان کنفیس کر لیتا ہے، جب اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کر لیتا ہے، تو پھر آسمان سے جواب آتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر اس وقت تمہیں چوٹ لگی، کس وقت؟ غزوہ احد میں۔ تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے فریق مخالف کو بھی تو لگ چکی، کب؟ بدر میں۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں۔ واللہ لا یحب الظالمین، کیونکہ اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا؟ اس کو ہائی لائٹ کیجیے۔ ام حسب تم ان تدخل الجنۃ ولم یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اب اس کو اپنے اوپر لیجیے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلی جاؤ گی، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہے وہ لوگ جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جبکہ موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ دیکھو جنت ایسی مل جائے گی، اتنے نرم گرم بستروں پہ بیٹھے، اے سیوں میں بیٹھے، کوچیز پہ بیٹھے، اپنی پسند کے کپڑے پہنے، اپنی پسند کی جگہوں پہ جاتے، کیا جنت ایسی مل جائے گی؟ ملتی ہے؟ آپ اپنے بچے سے کہ پڑھو گے نہیں، لکھو گے نہیں تو جاب ایسی مل جائے گی، آپ اٹھ کے صبح کام پہ نہیں جائیں گے تو پیسے ایسے ہی مل جائیں گے، تو کیا جنت بغیر محنت کے مل جائے؟ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ کیا مطلب ہے؟ کچھ کرو، عمل عمل۔ اس وقت امت مسلمہ کو عمل کی ضرورت ہے۔ فرقہ واریت اور اس قسم کے غیروں کے اوپر نام لگا کر ہم بے عمل ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں پہلے ان سب کو ٹھیک کرو پھر ہم ٹھیک ہوں گے، پہلے فلاں ملک مسلمان ہو، فلاں صدر مسلمان ہو، وہ پھر ہم بھی ہو جائیں گے، پوری دنیا میں بڑے کنٹریز ہیں ان کو مسلمان کر دو پھر ہم بھی ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے تم فکر کرو، اور جن لوگوں کو بڑا شوق تھا کہ جنگ لگے اور ہم جا کے لڑے، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے ارادے کہاں گئے؟ اچھا، آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی، جب کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، کوئی بھی بڑا چھوٹا انسانیت کے لیے، شروع میں بہت جوش سے لوگ کام کرتے ہیں، دن رات پیشن بن جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ٹھنڈے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا تم نے اس لیے یہ محنتیں کی تھی کہ یہ سارا کچھ کچھ سالوں میں ختم ہو جائے؟ تو جب کبھی ڈی مورلائزیشن ہونے لگے، ڈی موٹیویٹڈ ہونے لگے، تو اس بات کو سوچیں کہ کیا جنت کی قیمت نہیں دوں گی۔ بڑے شوق سے قرآن کا یہ سفر شروع کیا تھا، بڑے شوق سے یہ سفر شروع کرایا، کیا اب ڈھیلے ہو جاؤں گی؟ کیا اب مجھے نیند آ رہی ہے؟ کیا اب مجھے بھوک ستا رہی ہے؟ اب میرے بچے ستا رہے ہیں؟ اب میاں ناراض ہو رہے ہیں؟ یاد رکھیے، دین کے راستے سے بندہ بغیر ریزن کے نہیں جاتا، اور وہ ریزن اس کی سیلف کریٹڈ ہوتی ہے۔ बस दैट्स टू मच, दैट्स इट, दैट्स फाइन, इतना ही बहुत है। कोई खेल होता है ना तो चंद दिन खेले तो दिल भर जाता है, नो प्रॉब्लम। जब कोई चीज मिशन बन जाती है ना तो वो कभी खत्म नहीं होती, वो दिन ब दिन बढ़ती है। मिशनरी जील का नाम आपने सुना, यानी ये आप दरबुल मिसल बन गए कि फलां ये काम मिशनरी जील के साथ कर रहा है। वो मिशनरी जील के, आप मुझे चंद दिन पहले कुछ सुना रही थी, बाद में आप शेयर करना चाहें कि किस तरह से लोग अपनी दीन को फैला रहे हैं। उनकी डेडिकेशन देखिए, उनके काम देखिए, घरों में आपको ऐसी चीजें भेजते हैं, आप काम करें। तो क्या हम मुस्लिम जिनको जन्नत की आस है, क्या वो उसके लिए थोड़ी कोशिश नहीं करेंगे? इसके बाद आप यहां देखिए आयत 120 से लेकर तकरीबन आयत नंबर 170 तक, इसके अंदर बिटवीन ग़ज़वा उहद पर तबसरा। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए तो फिर बात वाजे हो जाएगी। और आज भी ऐसी बहुत सारी उहद लगी हुई है चारों तरफ। नबी सल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो कुफार की अना पे बड़ी चोट पड़ी। उनको लगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे हाथ से निकल गए। खैर एक साल गुजरा तो एक ग़ज़वा बदर के नाम पर जंग हुई। बिल्कुल एक एक्सीडेंटल किस्म की वॉर थी, कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक बिग वॉर बन गई, उसको भी नहीं हम छेड़ते। उस जंग के एंड पे कुफार ने धमकी देकर गए थे मुसलमानों को कि हम अगले साल भी आएंगे, अब हम हमला फिर करेंगे। मदीना में उससे वापस मक्का गए, वो सामान जो सारा उस काफिले में था जो लाखों की मालकियत का था, सारे मक्का वालों ने डोनेट कर दिया कि इसको रखो, तैयारियां करो, अब मुसलमानों के खिलाफ हमला करेंगे। अगले साल फिर ग़ज़वा उहद के नाम पर एक जंग हुई थी जिसमें कुफर अपनी पूरी तैयारियों के साथ आया। एक बिग चैलेंजिंग वॉर थी। जब नबी सल्लम को ये खबरें पहुंच गई तो अब आपने सहाबा से मशवरा लिया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हालात थे मुसलमानों का, अभी सर्वाइवल पूरा हो रहा था, मदीना में कई मसाइल थे। अल्लाह के नबी ने लोगों को बुलाया क्या किया जाए। दो राय दी गई लोगों की तरफ से। एक राय कहती कि हम अपने घरों में रहते हैं मदीना में, लेट देम कम, आएंगे देख लेंगे क्या होगा, घर में रहकर दिफा करें, यानी आप कह लीजिए वी विल हैव द डिफेंसिव वॉर। और डिफेंसिव वॉर मीन थोड़ी सी एक कमी होती है ना कि हम डर के घर में बैठ गए। दूसरे कुछ ग्रो का डर क्या था, वी नीड ऑफेंसिव वॉर, हम बाहर निकलते हैं, वो उधर से आए हम इधर से चलते हैं, हम उनको छुपा देंगे। खुद नबी सल्लम की अपनी राय भी यही थी कि अभी इतनी तैयारी नहीं है, हम अपने ही शहर में रहें। लेकिन जब मेजोरिटी की राय देखी, आपको इधर लीडरशिप की बहुत सारी बातें भी इंशाल्लाह मिलेंगी सीखने को। ग़ज़वा उहद तो अपनी जगह एक पूरा लेसन है, एक पूरा मैं समझती कोर्स हो सकता है सिर्फ ग़ज़वा उहद और उसके मॉरल्स के ऊपर। किस्सा मुख्तसर के अल्लाह के नबी ने उनकी बात मानी जो चाह रहे थे कि शहर से बाहर चले। और ये कौन थे? आप जैसी यूथ जिनको बदर में मौका ना मिल सका। और उन्होंने बाद में देखा बदरी साहबा की तो अल्लाह ताला ने बहुत तारीफें फरमाई हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, घर में रहे पता नहीं जंग होगी नहीं, अल्लाह के नबी चले निकलते हैं। जैसे जोशीले होते हैं ना, कहीं जाना तो बड़े क्या कहते हैं घर में ही बैठ के खा लेते हैं, तो बच्चे कहते हैं नहीं हम बाहर जाएंगे, कैफियत होती है। अब ये सारी यूथ थी, अल्लाह के नबी यूथ को हमेशा साथ लेकर चलते थे। और इस्लाम तब फैलेगा जब यूथ के हाथों में इस्लाम की जमा आएगी। किस्सा मुख्तसर, जब मुसलमान निकले, अब निकले तो सब साथ। अब्दुल्ला बिन उबई जो के कौन था, आज से उसका तारुफ ले लीजिए क्योंकि हर जंग में इसका नाम आपके सामने भी आएगा और आप इन सारी चीजों को देखेंगे। इसकी राय क्या थी कि शहर में बैठे रहे, राय सेम थी इसकी और नबी सल्लम की, लेकिन उसका मोटिव फर्क था कि बुजदिली को छुपाने के लिए, क्योंकि घर में होंगे तो कोई खबर तो नहीं फैलेगी कौन लड़ा कौन नहीं, तो मैदान जंग में लड़े तो मर जाएंगे। इसने शुरू में ये राय दी थी कि रहे यहां, जब सबने कहा नहीं तो ये भी चल पड़ा, लेकिन दिल में गरज था, अना थी। शौत नाम का एक मुकाम है मदीना शहर से बाहर तक, वहां जब पहुंचा इसने इस्लाम के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई, प्रोपेगंडा किया, जमात मुसलमानों की जो गई हुई थी 1000 लोगों की उसको तोड़ा, 300 लोग इसके साथ मदीना वापस आ गए। और एक्सक्यूज क्या कि जी हमारी तो बात ही नहीं मानी, ये हमारी बात ही नहीं मानते, ये आगे हम बात करेंगे। टीम में ये सबसे बड़ा एक घुन होता है किसी सोसाइटी में, किसी इदारे की टीम में, जब किसी को ये ख्याल आ जाए ना कि मेरी मानो, या मेरी नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, चूंकि आप मेरी मानते नहीं मैं आपसे नहीं हूं, तो समझिए कि वो खत्म। वो कहते हैं देर इज नो आई इन अ टीम, टीम के TEAM, आई नहीं होता, तो आई अना ईगो। किस्सा मुख्तसर, असल में बुजदिल था, मौत का डर था, वापस आ गया। जब ये निकलने लगा तो सहाबा बहुत घबरा गए। तो आप पढ़ेंगे आयत अल्लाह में कहते हैं क्यों डरते हो, बदर की फतह भी तो अल्लाह ने दी थी, उस वक्त तो अब्दुल्ला बिन उबई मुसलमान भी नहीं हुआ था, तो फतह मिली, आज इसके जाने पे क्यों परेशान हो? कोई नहीं, मोरल बुलंद किया सहाबा का, अल्लाह के नबी का लीडर के तौर पर एक बहुत ही खूबसूरत किरदार हम देखेंगे। बहरहाल मुसलमान गए। अब हुआ क्या कि अल्लाह के नबी ने उहद की जगह पे पड़ाव डाला, यानी स्टॉप ओवर मान लिया, जगह नॉमिनेट की, सहाबा बहुत थोड़े थे, उधर से 3000 का लश्कर आ रहा है। अगर सारे साथ रहते तो 3 times बिगर ग्रुप था, लेकिन 300 निकल गए तो वो और भी कम हो गए। अल्लाह के नबी ने एक जगह ऐसी थी पहाड़ी, छोटा सा एक रॉक था कि जिधर से दुश्मन के आने का खतरा था, बाकी पहाड़ बहुत बड़े हैं उधर से लोग नहीं आ सकते। और ये बात मैं कह रही हूँ तो मेरे जिन में वो मैदान है जो भी रिसेंटली दोबारा भी देखा हमने उमरे के ट्रिप में, कि वाकई ओहद की जो जगह बनी हुई है वो भी एक अल्लाह की तरफ से थी। एनीवे प्रोफेसर सल्लम की विजडम एज अ जर्नल कहती कि ये छोटी सी रॉक है, इधर से लोग आ सकते हैं, उधर आपने 50 लोगों को खड़ा कर दिया और उनको साथ इंस्ट्रक्शन दी, जिंदगी हो मौत हो तुमने ये जगह नहीं छोड़नी, फतह हो शिकस्त तो तुमने ये जगह नहीं छोड़नी, तुम देखो कि परिंदे हमें नोच के खा गए तुमने हमें जगह नहीं छोड़नी, मैदान लश्कर में हम कट गए मर गए तुमने जगह नहीं छोड़नी। खूब इंस्ट्रक्शंस दी, अब्दुल्ला बिन जुबैर को आपने उनका लीडर बना के मुकर्रर कर दिया, यही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मुकाबला हुआ। ओहद का आगाज यानी स्टार्टिंग पॉइंट वेरी स्ट्रांग था, मुसलमानों को थोड़ी देर में गलबा मिला, कुफार जो भागने लग गए, वो जो बहुत जोश में आए थे उनके साथ वही हुआ जो बदल में हुआ। जब वो भागे, अब कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन इज ओवर नाउ, जैसे बाद प्रोग्राम के एंड पे वॉलंटियर्स को गलती लग जाती है, लोग अपनी जगह छोड़ देते हैं, रिसेप्शनिस्ट भी किचन में है तो बाहर के भी इधर, वो सोचते हैं कि ऑल इज डन नाउ, हालांकि ऐसा नहीं था, अभी तो जंग थी। जब वो सब अपनी जगह छोड़ के गए और दुश्मन जब भागे तो उन्होंने माले गनीमत अपना छोड़ दिया। उस वक्त तक अभी कोई डिफाइंड रोल नहीं था, लोग अपना जाके दुश्मनों का छुड़ा हुआ माल जमा करने लग गए। अब ये वो चीज थी कि जो मुसलमानों के लिए नुकसान का जरिया बनी, ये देखते हुए वो 50 लोग भी देख रहे थे। अब वो भूल गए अल्लाह के नबी के हुक्म को, जब तक मैं तुम्हें ना कहूं तुमने जगह नहीं छोड़नी। उनको लगा जंग खत्म होगी, अगर हम यहां खड़े रहे तो माले गनीमत तो दूसरे फौजी ले जाएंगे, हमें नहीं मिलेगा। सिर्फ 10 लोग वहां रह गए और 40 लोग जो थे वो चले गए, और वो जो उनके सरदार थे अब्दुल्ला बिन जुबैर वो बुला रहे थे लोगो आ जाओ लोगो आ जाओ। हत्ता के यही हुआ जब वो दर्रा खाली हुआ, वो दुश्मन जो भाग रहे थे उनको खबर मिली कि दर्रा खाली है, वापिस पलटे और वापिस आके उसी रास्ते से जब आए। अब मुसलमान तो माल की मोहब्बत में थे उस वक्त, हालांकि देखिये मैदान जंग में गए हुए और माल की मोहब्बत अल्लाह को पसंद नहीं आई, घरों में बैठे हुए होगी तो कैसी होगी। उन्होंने उनको बिल्कुल वो कहना चाहिए अनकॉन्शियस पाकर पीछे से हमला किया, फिर तो समझिए कि जीती हुई जंग हारने में बदल गई। 70 सहाबा शहीद हुए, नबी सल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया, आपके हौद की कड़ियां आपके यहाँ कनपट्टी के पास घुप गई, हौद को निकालते हुए एक सहाबी के 2 दांत टूट गए, मुसअब बिन उमैर का इंतकाल हुआ जो अल्लाह के नबी के हम शक्ल थे, खबर फैल गई कि नौज बिल्ला नबी सल्लम फौत हो गए। अब तो मुसलमानों का रहा सहा मुराल भी गया, अब टूट गया, फिर 3 गिरोह बन गए। कोई कहने का अब क्या करें, कहा चुप करो वो सुफियान की बना ले लो, अब तो अल्लाह के नबी तो फौत हो गए हम किधर जाएं। किसी ने कहा ये कैसे हो सकता है, नबी ने जिस रास्ते में जान दी है हम भी उस पर जान देंगे, ये क्यों बर्पा हो गया। उस वक्त फिर अल्लाह के नबी लोगों को पुकार रहे थे, इलाही या इबादी अल्लाह के बंदो इधर आओ, मैं इधर हूँ, मैं तुम्हारे बीच में हूँ। फिर आपने सब मुस्लिम्स को दोबारा जमा किया। यानी हकीकत में गज़वा उहद एक सबक है कि मुस्लिम्स को अपनी शिकस्त को कैसे फेस करना है। गज़वा बदर क्या थी, कामयाबी को कैसे फेस करो, फतेह के जश्न मनाते हुए अल्लाह को ना नाराज करो। आज मुसलमानों के लिए देखें तो इस पूरे ग्लोब पे जगह जगह उहद के मैदान खुले हुए हैं, लेकिन मुसलमानों को समझ नहीं आ रहा नबी की नाफरमानी, हुक्म को जरा सा हल्का समझना और आप दौलत माल की मोहब्बत, उसने उहद की जीती हुई जंग हरा दी। लेकिन हारे फिर भी नहीं, ये भी नोट कीजिएगा, आप जाहिर है कि मुसलमान जब इस तरह थे तो कुफार उनको फिर पकड़ सकते थे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों में ऐसा रूप डाल दिया वो सब वापस चले, कुछ नहीं लेके गए मुसलमानों का। मदीना शहर खाली पड़ा था, जाके कुफार मक्का मदीना पे हमला कर सकते थे, अल्लाह ने उनकी अकल मार दी वो वापस चले गए। थोड़ा दूर गए तो फिर उसको ख्याल आया अबू सुफियान को, अरे ये क्या हुआ, हम तो उनको पकड़ सकते थे, इतना अच्छा मौका मिला नहीं पकड़ा, चलो वापस पलटते हैं। उसका जिक्र अगले वाक्य में आ रहा है, लेकिन याद रखिए इसमें आज के हालात को समझिए। मेरे और आपके लिए यहाँ 2 ताकत हैं, रसूल की बात को ना मानना और माल की मोहब्बत। आइए जरा इस वाक्य को सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह इसमें बाकी बातें होंगी। वह इस गदौ तमिना मकायदिल, ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुसलमानों के सामने इस मौके का जिक्र कीजिए जब आप सुबह सवेरे अपने घरों से निकले थे। नोट कीजिए, अल्लाह के दीन के रास्ते में सुबह सवेरे निकलना पड़ता है। ये आप में से उन सब के लिए खुशखबरी है जो दूर से आते हैं और कहां से कहां आके जाते हैं। हम सब इसको अपने ऊपर लेकर सोचे, जो लोग दूर से आते हैं कभी अपने ऊपर अहम न खाएं। याद रखिये कि अल्लाह की जात कभी भी बंदे का अजर जाया नहीं करती, कभी कभी हम सोचते हैं ना, हाय हमारे करीब हो तो फिर बहुत अच्छा है, करीब होगा तो क्या होगा, इधर भी तो कम होगा ना। जब आप अपने घर से निकलते हैं ना सुबह, तो आपका काउंटर शुरू हो जाता है। जैसे कुछ इदारे हैं वो पेकअप देते हैं जब वर्कर घर से निकल आते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं कि नबी निकले, और कहते हैं कि उस दिन नबी सल्लम हजरत आयशा के हुजरे में थे, लेकिन आप देखिए कि आप निकले। तो आज मैं और आप अगर अपने बच्चों को घर छोड़ के आ गए, मियां के पास छोड़ा है कि छुट्टी का दिन नजर, आज आप ये काम कर लीजिए, तो क्या बड़ी बात हो गई। तो ये दीन के काम अकेले नहीं चलते, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आती हैं। फरमाया रोहत के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जा बजा मामूर कर रहे थे, अल्लाह ताला सारी बातें सुनता है, वो निहायत बाखबर है। याद करो जब तुम में से दो गिरोह बुजदिली दिखाने पर आमादा हो गए थे, ये कब हुआ, जब अब्दुल्ला बिन उबई 300 लोगों को लेकर निकल गया जिनके दिलों में निफाक था। तो दो कबीले थे, सच्चे थे, मुखलिस थे, उनका भी दिल आया कि हम भी चलते हैं। ये ऐसे ही जैसे आप में से कोई एक उठ के जाएगा ना, तो बाकी सब घड़ी देखने लग जाएंगे कि शायद कोई टाइम आ गया या ऊपर हो गया। एक ईंट हिटती है तो दूसरी भी हिलती है, लेकिन चूंकि दिल में इखलास था, ईमान था, तो हालांकि अल्लाह इनकी मदद पर मौजूद था, अल्लाह ने इनको जाने नहीं दिया। ये कबीले फख्र करते थे कि देखो हमारा जिक्र कुरान में, गो के हमारी बुजदिली की बात है, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने कह दिया कि वल्लाहु वलीयुहुमा वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। आखिर इससे पहले जंगे बदर में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था क्या, उस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई और ये लोग साथ थे? नहीं थे। जितने वो लेके जा रहे हैं इतने तो टोटल बदर में थे, 313 के करीब थे। तो अल्लाह कहते हैं तवक्कुल तो तुम मुझ पर करो। आखिर इससे पहले जंगे बदर में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका है, हालांकि इससे पहले तुम बहुत कमजोर थे, लिहाजा तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो। उम्मीद है कि तुम अब शुक्र गुजार बनोगे। यानी शुक्र गुजार किस चीज के, कि अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया, तुम्हें नबी दिया। ए नबी याद करो जब तुम मोमिनों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी नहीं कि अल्लाह ताला 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे? बेशक अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते हुए काम करो। देखिए तकरार मिलेगी आपको, अब इधर तस्बीरु और तत्तकु। आप कह सकते हैं सब्र और तकवा दुश्मन के मुकाबले में कामयाब होने के दो हथियार हैं। ओहद में इसी के फुकदान में भगदड़ मची। अल्लाह में सिखा रहे हैं कि रिएक्शनरी न बनो, जज्बाती न बनो, सोच समझ कर काम किया करो। तो जिस आन दुश्मन तुम पर चढ़ाएंगे, इसी आन तुम्हारा रब 3000 नहीं 5000 साहिब शान फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। ये बात अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बता दी कि तुम खुश हो जाओ और तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाए। यानी फतह नुसरत जो कुछ भी है वो तो अल्लाह की तरफ से, जो बड़ा कुव्वत और वाला और दानव भी न, और ये मदद तुम्हें वो इसलिए देगा ताकि कुफर की राह पर चलने वालों का एक बाजू काट दे, या इनको ऐसी जलील शिकस्त दे कि वो ना मर्दी के साथ पिसपा हो जाए। क्या पता चला कि फरिश्तों का आना भी ये ना सोचना कि फतह फरिश्तों की वजह से हुई, फरिश्तों की वजह से नहीं हुई, ये तो सिर्फ अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दिया, मदद तो असल अल्लाह की तरफ से। और ये सबक आज पढ़ने की जरूरत है। आज तो मुसलमान तादाद में भी बहुत ज्यादा है, पहले तो चंद लोग थे। अगर ईमान से भरे हुए मुसलमानों के हाथ होना तो वो जदीद असलहे के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए कहा कि असल ये दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें मदद दे। ए पैगंबर, फैसले के इख्तियारात में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, इसको भी हाईलाइट करें। बस वह बहुत में चूके अल्लाह के नबी सल्लम का दांत ज़रा जख्मी हुआ तो आपकी जुबान से ये जुमले निकल गए कि अल्लाह उस कौम को कैसे हिदायत देगा जिसने अपने नबी को जख्मी कर दिया। अब ये एक बात थी, अल्लाह के नबी को कहने का हक था, लेकिन अल्लाह को ये जुमला पसंद नहीं आया। कहा आप कैसे किसी के हिदायत पे आने या ना आने की बात कर सकते हैं? फरमाया अल्लाह को इख्तियार है कि इन्हें माफ करे चाहे सजा दे, क्योंकि वो जालिम है और जमीन में और आसमानों में जो कुछ है वो अल्लाह का है, और जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे अजाब दे, वो माफ करने वाला और रहीम है। अब यहाँ देखिए लोहा गर्म था, ओहद की शिकस्त की वजह माल की मोहब्बत हुई ना, तो उस बात को बेस बनाकर हुक्म दिया गया अय्युल्लज़ीना आमनु ला ताकुलु रिबा अदाफा मुदाफा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ये बढ़ता चढ़ता हुआ सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। इस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई, और अल्लाह रसूल की इताअत करो तो तवक्को है कि तुम पर रहम किया जाए। ये दूसरा मुकाम है जहाँ इंटरेस्ट की बात है, सूद की बात है, क्योंकि अरब लोग मल्टीप्लाई करके सूद देते थे। आज तो आपने अक्सर ऑफर्स के साथ देखा होगा ना, 10% इंटरेस्ट, 20%। अरब लोग 10% 20% नहीं देते थे, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई, यानी 100% 200% 300%। इतनी वो सोसाइटी इंडल्ज हो चुकी थी, घुस चुका था उनकी जड़ों में सूद, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको बता दिया। چند احادیث آپ سے شیئر کر لیتی ہوں صرف ایک حوالے کے بغیر، اس سوچ کے ساتھ کہ آپ جو بھی اس کا ریفرنس لینا چاہیں، بلکہ میں چاہوں گی کہ اس کے ویب پیج آپ کو ساتھ وہ حدیث کا پیپر دے دیا جائے ای میل میں، تاکہ آپ کو شرح صدر ہو جائے. اتنا وقت نہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ حدیث پڑھیں، لیکن دو تین احادیث بہت فیمس ہیں. پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ جبرائیل کے ساتھ گئے تو آپ کو کچھ چیزیں دکھائی گئی تھی. آپ نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں تو ان کے بڑے بڑے گھر ہیں، مٹکوں کی طرح شیشے کے ہیں، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں جو ان کو اندر سے کھا رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں، یعنی ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو ہوں گے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک خون کی نہر کے پاس سے گزارے گئے تو وہاں کوئی شخص بڑی مشکل سے خون کی نہر سے باہر آتا ہے، لیکن کنارے پہ کھڑا کوئی فرشتہ دوبارہ اس کو پتھر مار کے واپس اس میں بھیجتا ہے. تو پوچھا یہ کون ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی سود کا کام کرنے والے، لینے دینے والے، کہ جب وہ نکلنا چاہتا ہے تو جو سود لے رہا ہے وہ اس کو واپس ڈال دیتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چار لوگوں پر انٹرسٹ یا سود کی وجہ سے لعنت ہے. کون؟ آکلہ و موکلہ کاتبہ و شاہدہ. آکل کھانے والا جو لے رہا ہے، موکلہ جو دے رہا ہے کھلانے والا، شاہدہ جو اس کا وٹنس ہے، اور کاتبہ جو اس کی ڈاکیومنٹیشن کر رہا ہے. یعنی ہر کاروبار اور جاب جس میں کوئی ایسا معاملہ آ جائے، اس حدیث کی روشنی میں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اب یہ ساری باتیں اور اس کے ساتھ اور بہت ساری باتوں میں ایک حدیث اور بتاتی ہوں کہ سود کا ایک درہم کھانا اپنی ماں کے ساتھ تقریباً 36 بار زنا کرنے سے بڑا. اتنی شدید باتیں. اس کے بعد امت مسلمہ جو امت وسطی، جس کے دل میں مال کی تو محبت ہی نہیں تھی، وہ اگر آج اس میں ڈل جائے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے؟ آج امت مسلمہ پہ اللہ کی مدد کیوں آئے، کیسے آئے؟ ان گھروں میں کیسے آئے جہاں یہ معاملے ہیں، ان کاروباروں میں کیسے ہے، ان نسلوں میں کیسے ہے، ہر چیز میں تو یہ پانی پڑ گیا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم اتنے پریشان مسلمان دیکھتے ہیں ارد گرد، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آنا چاہتے ہیں اندر آ ہی نہیں پا رہے، اللہ کی مدد آنا چاہتی ہم لے ہی نہیں رہے. دیکھیے کوئی منہ نہ کھولے تو آپ اس کے منہ میں کھانا کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے نکالے، اور نکلنے کے راستے آگے ہم دیکھتے جائیں گے، اور بھی یہ موضوع آئے گا تو ان شاء اللہ. اس میں آج کے دور میں جو جال پھیلا ہوا ہے، اگر آپ وہ سن لینا کہ یہ بینکنگ کا سسٹم شروع کہاں سے ہوا تھا اور اس کے پیچھے آج بھی کیا حالات ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم تو پھر پٹ آف کر کے سب چھوڑ چھاڑ کے تو کونوں میں بیٹھ جائیں، کوئی کسی جگہ ڈیل ہی نہ کرے. لیکن اس کے لیے مسلم برین چاہیے. پیچھے بھی بات کی تھی، آج بھی یہ بات کہوں گی کہ مسلم یوتھ کو یہ سبجیکٹس پڑھنے چاہیے تاکہ مسلمز اپنے سسٹم کریٹ کریں. اگر آج ساروں کو ختم بھی کر دیں تو مسلمز کے پاس آلٹرنیٹ ہے بھی کیا؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری سستیاں دور کریں اور ہم دین کے فائدے کے لیے دنیا کا علم بھی حاصل کر سکیں.